পূজ্য সুধীজন দেবীয়। মহর্ষি দয়ানন্দজীকে লিখিত সত্যার্থ প্রকাশ ইংলিশ মে লাইট অফ ট্রুথ কে সেকেন্ড চ্যাপ্টার কো পড় রে থে, উসি পর চর্চা কর রে থে। আর বেসিক্যালি এ চ্যাপ্টার হে বচ্চো কো ক্যাসে পালন পোষণ কিয়া যায়। পিছলি বার হমনে চর্চা কি কি মাতা পিতা কো জব বচ্চা 5 সাল কা হো যায়, 5-6 সাল কা, তো থোড়া কঠোর ব্যবহার শুরু করনা জরুরি হোতা হয়। জন্ম সে লেকর কে 5 বা 6 সাল কে উমর তক বচ্চে কো পুরি তরহ সফট ব্যবহার চাহিয়ে, কোমল ব্যবহার, লালন পালন চাহিয়ে। পর 6 সাল সে লেকর 16 সাল তক উমর তক, 16 ইয়ার্স এজ তক, উসকে সাথ কঠোর ব্যবহার কি জরুরত পড়তি হ্যায়। আগর হমনে ডিসিপ্লিন নেহি রখা, অনুশাসন নেহি রখা, থোড়া কঠোর ব্যবহার নেহি কিয়া, না বোলনা নেহি শিখা, জাদা লাড পাড় সে ইসি উমর মে বচ্চে বিগড়তে হ্যায়। ইসকি চর্চা হমনে কি, ইসকা পরিণাম ক্যা হ্যায়, আজ হম থোড়ি বহুত অর চর্চায় করেঙ্গে। ইন এডিশন টু আদার টিচিং, ইসকে আলাবা বচ্চো কো জো হম আবি 3-4 মহিনে সে, 2-3 মহিনে সে জো চর্চায় কর রহে থে, বচ্চো কো ইয়ে শিখানা ভি জরুরি হ্যায়। চোরি না করনা, আলস্য, ঘমন্ড, ইয়ে সব আপ জানতে হ্যায়, হম পালন ভি করতে হ্যায়। নশা, নশে মে না ফাঁস যায়, হিংসা, ক্রুয়েলিটি, দূসরো কি চুগলি করনা, বুরাই করনা। আব ইয়ে জিতনে আপ দেখ রহে হ্যায়, ইয়ে সব বচপন মে হি শুরু হোতা হ্যায়, আর কবি কবি হমারে অনজানে মে শুরু হোতা হ্যায়, কবি কবি মজাক মে শুরু হোতা হ্যায়, কবি কবি ফান মে শুরু হোতা হ্যায়। হমারে বচ্চে জব হমারে সামনে কিসি কুত্তে কো টঙ্গ করতে হ্যায়, বিল্লি কো টঙ্গ করতে হ্যায়, খরগোশ কো টঙ্গ করতে হ্যায়। ভারত মে হমনে দেখা, ও গলিও মে কুত্তে কে দিওয়ালি সে পহলে উসকে পিছে পুঁছ মে পটাকে লগা দেতে হ্যায়, আর বড়ে বড়ে লোক দেখ করকে হাসতে হ্যায়। হম ইসি তরহ বচ্চে কে অন্দর ও ক্রুয়েলিটি কো, হিংসা কো পন পনপনে দেতে হ্যায়, বড়ানে দেতে হ্যায়। বচপন মে প্র্যাকটিক্যালি, না থিওরিটিক্যালি, আগর ইন চিজো কো বচ্চো কো হম রোকে নেহি, বতায়ে নেহি, উনকে অন্দর ইয়ে বাতে না ডালে, তো হমারে অনজানে মে আর বচ্চে আপনে অনজানে মে কব হিংসক হো চুকে হ্যায়, কব ক্রুয়েল হো চুকে হ্যায়, কব কঠোর দিল বালে হো চুকে হ্যায়, হমে পতাই নেহি চলেগা। বচ্চো কো বোলনে সে নেহি হোতা হ্যায়, কুছ চিজে করনা পড়তা হ্যায়, টোকনা পড়তা হ্যায়, কবি কবি আপনে ব্যবহার মে লানা পড়তা হ্যায়। আর ইয়ে সব চিজে হম বচপন মে করতে হ্যায়, বচপন মে টোকতে হ্যায়, উসি উমর মে টোকতে হ্যায়, তো ওহি প্রভাব উসকো আগলে জীবন তক, পুরি জিন্দগি ভর রহতা হ্যায়। আগলা স্লাইড লেঙ্গে। ব্যক্তি জীবন মে সবসে জাদা জো জো ভরোসে কে লায়ক নেহি হোতা, ইকিন করনে লায়ক নেহি হোতা, ও ব্যক্তি জো আপনে প্রমিস কো তোড়তা হ্যায়। আর ইয়ে ভি বচপন সে শিখানে লায়ক হোতা হ্যায়। প্রমিস কো তোড়না মতলব আপনে কিসি কো কাহা মে আপকো থার্সডে গুরুবার কো শাম কো 5 বজে অমুক জগহ পর মিলুঙ্গা, আপ 5 বজে নেই আতে, আপ 6 বজে আতে, 6:30 বজে আতে, ইয়া আতে হি নেই হ্যায়। আর ইয়ে হমারি খাস করকে হম লোগো কি তো ইয়ে বহুত বড়ি প্রবলেম হ্যায়, ইন্ডিয়ান খুন ওয়ালো কি, খাস করকে পংচুয়ালিটি কে বারে মে হম বহুত হি ফেমাস হ্যায় দুনিয়া মে। আর ইয়াহাঁ আকর ভি বহুত সারে লোগো কো লাগতা হ্যায় ইয়ে হমারা কালচার হ্যায়, ইসকো বনায়ে রখনা চাহিয়ে। বহুত সারে ইন্ডিয়ান লোক ইয়াহ ভি মানতে হ্যায় কি কিউ হম ছোড়ে আমেরিকান বনে, বাকি কিউ হম আপনি জো টাইম সেন্স কে বারে মে জো হমারা আপনা কালচার হ্যায় কি 5 বজে টাইম দিয়া তো হম 5:30 বজে আয়েঙ্গে, 6 বজে আয়েঙ্গে, ইয়ে হমারা ইন্ডিয়ান কালচার হ্যায়, হম ইসকো কিউ ছোড়েঙ্গে, হম বাকি চিজো মে হম আমেরিকা। ওয়েসে আদমি বড়া চুজি হোতা হ্যায়, ও কালচার কে নাম পর আপসে ডিবেট করেগা, উনি চিজো কো ও কালচার নেই মানেগা, কালচার মানেগা জো ও খুদ অ্যাডপ্ট কর চুকা হ্যায়, আর আগর জো ও নেই কর সকতা ও সব বেকার কালচার, ও আমেরিকান কালচার হো জায়েগা। তো বহুত সারে ইন্ডিয়ান সুধরনে কা নাম নেই লেতে, টাইম सही समय पर आने को उनको बुरा लगता है। ये हमारे बाप दादा खानदानी परंपरा है। ये हम ऐसा कैसे बने, क्योंकि बचपन से ही बने, अब सुधरते ही नहीं है, क्या करें। 5 बजे टाइम देते और पहुंचते पहुंचते 5:10, 5:15, 6 बजी जाता है, क्या करें, होता ही नहीं है, कहां से एडजस्ट करें समझ में नहीं आता है। पर पता लगता है 90% लोग 10 बजे आते हैं, पर हमारे से होता क्यों नहीं, क्योंकि वो बचपन से वो खून में घुस चुका है, अब वो होगी नहीं, कम से कम हमसे नहीं होता है, तो हम अपने बच्चों को वो सिखा सकते हैं कि पंक्चुअलिटी क्या चीज होती है। किसी से आप प्रॉमिस करते हैं तो उसको निभाना कितना जरूरी होता है जीवन में। और ये होता है जब हम जब बच्चों के साथ बिहेव करते हैं, तभी ये हमारे जीवन में झलके, हमारे प्रॉमिस को हम फुलफिल करें, हमारी पंक्चुअलिटी को हम दिखाएं, तो बच्चे उससे धीरे धीरे सीखने लगते हैं। अगला स्लाइड लेते हैं। इट इज व्हाई ऑल शुड स्पीक द ट्रूथ एंड बी ट्रू टू देयर वर्ड्स, नोबडी शुड हैव वैनिटी। इसीलिए हर व्यक्ति को सच बोलना चाहिए, अपने वाणी में अपने व्यवहार में सच झलकना चाहिए, और किसी को गर्व घमंड करने की जरूरत नहीं है। जो लोग सत्संग में जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, जिनके पास थोड़ा सा भी अकल है, वो जानते हैं कि जितने भी रिलेशन में गड़बड़ियां होती है, वो परिवार के रिलेशन हो, रिलेशन हो आपस में, या ऑफिस की काम में रिलेशन हो, या सोसाइटी में समाज में हो, आपस के रिश्ते में आपस के संबंधों में ज्यादातर जो खराबी आती है, उसका मूल कारण हमारा ये जो अहंकार है, जो घमंड है, जो ईगो है। दुनिया में जितने हमारे सेंटिमेंट्स है, मानसिक अवस्थाएं हैं, लोभ मोह क्रोध ईर्ष्या प्यार मोहब्बत वगैरह वगैरह, उनमें जो सबसे बेकार और यूजलेस चीज है, जो गुस्सा का भी जरूरत है संसार में, हर चीज की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जरूरत है आगे बढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए, सिवाय ये अहंकार, ये घमंड, इसकी सिवाय बर्बादी के कोई फायदा जीवन में कभी नहीं होता है। ध्यान रखिए, सेल्फ एस्टीम एक अलग चीज है, ईगोइज्म बिल्कुल अलग चीज है। ध्यान रखिए, जितनी भी बुराइयां होती है, उन बुराइयों का भी कभी ना कभी कभी लाभ होता है, कभी कभी हम ईर्ष्या भी करते हैं, उससे हमें फायदा होता है। जब हम अपने कॉलिक से ईर्ष्या करते हैं, इसी बहाने हो सकता है हम ज्यादा मेहनत करते हैं, उसे आगे बढ़ जाते हैं, पर इस घमंड का कभी कोई एक पैसे का फायदा किसी को नहीं होता। पर दुनिया में सभी लोगों के अंदर ये घमंड भरा पड़ा होता है, और यहीं से गड़बड़ियां शुरू होती है। और ये नए जमाने के बच्चे तो पता नहीं कहां से, शायद वो पेरेंट्स के जीन से आता है, वो तो कुछ पैदाइशी घमंडी होने लग जाते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। और ये बचपन से, इसीलिए प्राचीन काल में आप देखेंगे जो जो गुरुकुलीय व्यवस्था थी, जो बच्चों को गुरुकुल में छोड़ा जाता था, हम बार बार इसकी चर्चा करते थे, रोज बच्चे को भिक्षा मांगने जाना होता था, और वो भिक्षा शाम को जो लेकर आएगा वो गुरु को दे, गुरु भी भिक्षा मांगने जाता था पर वो गुरु को सौंपता था, और उसके लिए नियम था, सन्यासी विद्यार्थी, कि आपको रोज भिक्षा मांगने जाना है, भिक्षा मांगने नहीं जाना तो खाना नहीं है, जो भिक्षा में आएगा सिर्फ वही खाओगे। राजा का बेटा हो, जमींदार का बेटा हो, कितना भी धनी व्यक्ति का बेटा हो, आजकल की तरह अलग अलग स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, कितने भी बड़े व्यक्ति का बेटा हो और कितना भी गरीब का बेटा हो, एक ही गुरुकुल में एक ही टाइप में पढ़ाई करते थे, सबको भिक्षा मांगने जाना होता था। वो कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, तभी दोस्ती हुई थी, सबको भिक्षा मांगने जानी होती थी। भिक्षा मांगने के पीछे कारण क्या था? सिर्फ यही कि इसका अहंकार टूटने का प्रैक्टिस हो। जब भीख मांगने जाएगा, और रूल क्या था कि आप एक गांव में 3 दिन से ज्यादा बार भिक्षा मांगने नहीं जा सकते, एक व्यक्ति के घर 3 दिन से ज्यादा भिक्षा मांग नहीं सकते थे। सीधा सा लॉजिक है, आपको हमेशा नए लोगों के घर नए जगह पर मांगने की जरूरत है। क्यों? भिक्षा मांगने का कारण यह नहीं था कि उनको धन चाहिए था गुरुकुलों को। गुरुकुलों को धन तो राजा भी दे सकते थे, जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके पेरेंट्स भी दे सकते थे, पर कोई फीस नहीं था, कुछ नहीं था। इसीलिए कि बच्चे बचपन में केवल पढ़ाई ना करें, किताबी विद्या ना करें, जिंदगी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अहंकार, वो टूटे। और क्योंकि आजकल इस अहंकार को चोट पहुंचाने के लिए कोई सिस्टम नहीं रहा, उल्टा हर चीज में अहंकार को बढ़ाने के लिए सब उपाय हैं, और मां बाप कभी कभी इस चीज को प्रमोट करते हैं और बच्चा घमंडी होता है। बचपन में कभी कभी मां बाप को यह बड़ा प्यारा लगता है, पर वो भूल जाते हैं बड़ा होने पर जब वो समाज में जाता है वो उस व्यक्ति का कितना निरादर होता है। दूसरी चीज होती है फ्रॉड और हेपोक्रेसी। हेपोक्रेसी, जो मैं नहीं हूं वैसा मैं दिखाता हूं, ये हेपोक्रेसी है, पाखंड है। चीटिंग करना, लोगों को ठगना, ठगने का अर्थ नहीं कि आप किसी को जाकर लूटते हैं, ठगने का अर्थ सिर्फ इतना है जैसा आप हैं, जो आपके पास है आप वैसा ना बोल के आप अपने आप को ज्यादा या कम बताते हैं, अपने सामानों को ज्यादा या कम आंक करके बताते हैं, अपने बारे में, अपने जिन चीजों की आप बात करते हैं, आप जिस रिलीजन से जुड़े, जिस देश से जुड़े हैं, जिस कल्चर से जुड़े हैं, जिस सामान से जुड़े हैं, जिस मार्केट से जुड़े हैं, जिस सोसाइटी से जुड़े हैं, उनको आप जरूरत से ज्यादा बड़ा बना के पेश करते हैं या छोटा बना के पेश करते हैं, ये चीटिंग है, हिपोक्रेसी है। जब आप पर हमारा मन और वचन दो अलग अलग हो, मैं अंदर कुछ सोचता हूं और बाहर कुछ बोलता हूं, इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं। जब हम दुनिया को सिखाते हैं सच बोलना चाहिए, पर हमारे अंदर सच बोलने की कहीं कोई इच्छा नहीं है, तो यह हिपोक्रेसी है। जब हम दुनिया को सिखाते हैं कि आपको अच्छा बनना है, पर हम अंदर से कभी अच्छे बनने की कोशिश नहीं करते हैं, यह हिपोक्रेसी है। जब हम अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम पोलाइट बनो, पर हम कहीं से पोलाइटनेस हमारे अंदर नहीं दिखता, तो वो हिपोक्रेसी है। जब हम अपने लोगों को बोलते हैं कि आप सच बोलो, पर हम खुद जरूरत पड़ने पर जरूरत से ज्यादा झूठ बोलते हैं, यह हिपोक्रेसी है। जो हम बोलते हैं और नहीं करते हैं, जो हम दिखाना चाहते हैं पर होते नहीं है, यह हिपोक्रेसी है। दुनिया में सबसे ज्यादा हिपोक्रेसी धर्म में है, रिलीजियन में है, धार्मिक संस्थाओं में, धार्मिक व्यक्तियों में देखने को मिलता है। क्योंकि यहां बहुत सारी चीजें डिमांड होता है, करना पड़ता है, शरीर को, मन को, अपने व्यवहार को नियंत्रित करना होता है, बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, और यहीं से हिपोक्रेसी शुरू होती है। अब दूसरी चीज होती है इनग्रेटिट्यूड, एहसान न मानना। ये भी बचपन से सिखाने की जरूरत होती है बच्चों को। बच्चा बड़ा होते ही 15-17 साल का होता नहीं है, सवाल पूछने लगता है, मेरे लिए क्या किया? अब उसको कोई समझाए, ये तुम्हारे मां बाप है, इनको रेस्पेक्ट करो, ये टीचर है, रेस्पेक्ट क्यों क्यों रेस्पेक्ट करो, क्योंकि तुम्हारे मां बाप है, तो क्या हो गया? ये टीचर है तो क्या हो गया जी? तुम्हें उन्होंने जन्म दिया, किसने कहा था जन्म देने के लिए? उन्हें पाला तुम्हें, तो कौन सा एहसान किया? ये मैं कोई इमेजिनरी सेंटेंस नहीं बोल रहा हूं, यह हकीकत है। और जितना आप वेस्टर्नाइज्ड होते जाते हैं उतना यह सेंटेंस ज्यादा मिलेगा, भारत में भी यह सुनने को मिलता है। अब ये जो एहसान फरमोशी है, इनग्रेटिट्यूडनेस है, ये व्यक्ति को कहीं का नहीं होने देता है, ना खुद के जीवन में कभी कोई तरक्की हो सकती है, ना दूसरे के जीवन में। स्वामी जी कहते हैं कि जो लोग इस तरह की मेंटालिटी पालते हैं, चीटिंग की, फ्रॉड करने की, हिपोक्रेसी की, या जो ये जो इनग्रेटिट्यूडनेस की, उनके दिल को अगर कोई खंगाले, उनके अंदर कोई खंगाले, उनसे ज्यादा दुखी, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेशन में रहने वाला व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। मतलब इसका उल्टा समझना हो, जो व्यक्ति कृतज्ञता को मानता है, एहसान को मानता है, जो हिपोक्रेसी नहीं करता, जो फ्रॉड नहीं करता, उसका मन ज्यादा निर्मल होता है, ज्यादा क्लियर होता है, उसको ज्यादा शांति मिलती है, उसको अंदर ज्यादा खुशी मिलती है और वो ज्यादा चैन से सो सकता है। कोई भी हिपोक्रेट व्यक्ति कभी बेचैन में रह नहीं सकता, वो बेचैन ही होगा, क्योंकि वो जो बोलता है वो करता नहीं है। कोई भी एहसान न मानने वाला व्यक्ति जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकता। ये हमारे मन खुशी रहने, ध्यान रखिए, खुश होने के लिए हमें पैसों की, ज्ञान की, रूप की, इन सब की संसार में जरूरत है, पर इनसे खुशी नहीं होती है। खुशी होना एक, खुशी पाना एक अलग चीज है। हमारा माइंडसेट जब खुशी पाने लायक होता है तभी हमें खुशी मिलती है। और माइंडसेट क्या है, मेरे पास बहुत है या कुछ नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता। अगर पैसे से ही खुशी मिलती तो दुनिया के सारे गरीब दुखी होते हैं, पर ऐसा देखने को कभी नहीं मिलता। दुनिया में करोड़ों लोग दुखी हैं और ज्यादातर लोग तो गरीब हैं, ज्यादातर लोग तो गरीब हैं दुनिया में। इस धरती पर 60% से ज्यादा लोग गरीब हैं, बहुत कम लोग धनी हैं या यहां गरीब का मतलब जिनको रोज खाना नहीं मिलता। पर खुशी एक अलग चीज है, खुशी ढूंढनी होती है। खुशी मानसिक अवस्था का नाम है, ये मेंटल स्टेट का नाम है। आपके पास कुछ भी नहीं, आप खुश हो सकते हैं, सब कुछ है, खुश हो सकते हैं। आपके पास सब कुछ है, आप दुखी हो सकते हैं, नहीं है तो भी दुखी हो सकते हैं। ये जो शुद्ध आचरण है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि आप क्रूएल ना बने, आप इनग्रेटिट्यूड का सेंस ना रखे, आप हिपोक्रेसी ना रखे अंदर, इससे फायदा क्या है? समाज को कोई फायदा है नहीं है, वो हमें जरूरत नहीं है। आप दोनों, हमारी प्रॉब्लम है कि हम दूसरों पर एहसान करने में बड़े सोचते रहते हैं, हम खुद पर एहसान करते हैं। जब भी मेरे ऊपर किसी ने मुझे छोटा सा भी हेल्प किया, मैं उस छोटे से हेल्प को अगर स्वीकार करता हूं, मानता हूं, एहसान मानता हूं कि इसका हेल्प मुझे मिला, उस व्यक्ति का कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि जब जिसने मुझे हेल्प किया उस वो इस फीलिंग के साथ नहीं हेल्प किया कि उसको कुछ मिलेगा। जब मैं इस बात को मानता हूं तो मेरा दिल ज्यादा सॉफ्ट होता है, मेरा मन ज्यादा निर्मल होता है। जब मन निर्मल होता है, हृदय कोमल होता है, तो मेरा जो पर्सनालिटी है, इंटरनल या एक्सटर्नल, दोनों तरह की जो मेरी पर्सनालिटी है वो ज्यादा सुख को अब्सॉर्ब करने को, ग्रहण करने की क्षमता रखता है। जितना मन निर्मल होगा उतनी शांति अधिक होगी, उतनी बेचैनी कम होगी, उतना तनाव कम होगा। आप झूठ बोलने वाले और सच बोलने वाले में अंतर यही है। हो सकता है झूठ बोलने वाले को दुनिया में फायदा बहुत हो, पर जो सच बोलता है, वैसे सच बोलने वाले जो लोग होते हैं उनको लोग ज्यादातर खड़ूस बोलते हैं और उनका सामाजिक दायरा, सोशल रिलेशनशिप बहुत कम होता है। पर आप देखेंगे कि वो सच बोलने वाला व्यक्ति, जो लोग जो नेचर से सच बोलने वाले होते हैं, 100% सच बोलना तो बड़ा मुश्किल काम है आम लोगों के लिए, पर जिसका भी परसेंटेज जितना अधिक होगा आप देखेंगे वो उतना पीसफुल होगा, उतना शांतिपूर्ण होगा, उतना सुखी होगा। दुनिया उसको पसंद करता है नहीं करता है, उसका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई उसको पूछता है, नफरत करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि खुशी अंदर से होती है, अपने मानसिक अवस्था से होती है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, व्हेन फ्रॉड, हिपोक्रेसी एंड इनग्रेटिट्यूड गिव पेन टू वन्स ओन माइंड, देन द लेस सेड अबाउट अदर्स द बेटर। ये सब चीजें जो करने वाला व्यक्ति, जो जितना हिपोक्रेट होता है, जितना फ्रॉड होता है और जितना इनग्रेटिट्यूडनेस रखता है, वो खुद अपने अंदर इतना मरा हुआ होता है, उसका जमीर इतना मरा हुआ, उसकी आत्मा इतनी सड़ी हुई होती है, उसी से पूछो उसका क्या दर्द है और दूसरों के बारे में हम क्या कहें। इसीलिए जितना ये हमारे जीवन में कम हो हम इतना ज्यादा खुश होंगे। दूसरों को खुश कराना तो दूर की बात है, हम खुद खुश होंगे जितना हम इन चीजों से दूर रहेंगे। बहुत सारे लोग आप देखे होंगे जो जो अपनी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, उनके पास अगर 10 रुपए है तो 100 करके बताएंगे, 5 हो तो 50 बताएंगे। ऐसे व्यक्तियों को आप देखेंगे वो हमेशा उनके अंदर एक डर बना रहता है कभी भी पकड़े जाने, सामने निकल जाने। अगले आते हैं पांचों, मैंने जैसे बताया इनग्रेटिट्यूड, एहसान फरमोश होना, मेरे ऊपर किए गए एहसान को उपकार को ना मानना, मां बाप के उपकार को। इसीलिए हमारे यहां जो देवता का कंसेप्ट है हिंदुइज्म, यही देवता का मतलब कुछ नहीं कि कोई इंद्र चंद्र ये जो सूर्य चंद्र ये सब देवता और जिनको पूजने से हमें कुछ मिलेगा। देवता का सिंपल मीनिंग है, हमारे शास्त्रों ने उसकी जो एटिमोलॉजिकली मीनिंग दिया, देवो दानात्म, जिसने भी कुछ हमारे जिंदगी में हमें कुछ दिया, वो सूरज की रोशनी नहीं होती मेरी जिंदगी नहीं होती, पानी नहीं होती तो मैं नहीं होता, ये पेड़ पौधे नहीं होते, ये कीड़े मकोड़े नहीं होते, ये मेरे रिलेटिव्स नहीं होते, ये समाज नहीं होता, किसके बिना मेरा जीवन रह सकता है? दुनिया में जो कुछ ईश्वर ने बनाया सबकी मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूरत है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में वैदिक धर्म में हर चीज देवता है। ये क्या है? ये ग्रैटिट्यूडनेस है, ये स्वीकार करने की एक एक तरीका है कि दुनिया का हर वस्तु देवता है, मतलब मेरे लिए वो पूजा के लायक है, मेरे लिए वो सम्मान के लायक है। क्यों? क्योंकि उसके मेरे जिंदगी में कोई ना कोई कोई योगदान है, कोई कोई एहसान है, कुछ कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए कहा कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, मां को देवता मानो, पिता को देवता मानो, अध्यापक को देवता मानो, जो समाज सेवा करते हैं उनको देवता मानो, वगैरह वगैरह वगैरह। इनग्रेटिट्यूड का सिंपल सा मतलब है कृतज्ञता का निगेशन ऑफ द एप्रिसिएशन ऑफ द गुड डन बाय अदर्स। ये मानने से इनकार कर देना है कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ किया है। ये जो हमारे यहां एक श्राद्ध शब्द है, लोग श्राद्ध करते हैं, वैसे तो श्राद्ध आजकल मरने के बाद करते हैं। श्राद्ध का अर्थ था श्रद्धा से किया जाने वाला काम, और श्रद्धा का अर्थ होता है, श्रद्धा में दो शब्द होते हैं, श्रत प्लस धा, श्रत मतलब सच, धा मतलब टू होल्ड। जिस एक्टिविटीज में जिस कंडक्ट में सत्य को धारण किया जाता है उसे श्रद्धा कहते हैं। अब क्या मतलब है इसका? इस सच्चाई को मानना कि मां बाप ने मेरे लिए कुछ किया है, इसको एक्सेप्ट करना, इस ट्रूथ को होल्ड करके जो कुछ आप करेंगे वो श्राद्ध है। इस सच्चाई को मानना कि इस देश ने मुझे कुछ दिया है, आप इसको मानकर जो कुछ भी इस देश के लिए करेंगे वो श्राद्ध है। श्राद्ध मतलब श्रद्धा से किया गया काम, मतलब उस सच्चाई को स्वीकार करके किया गया काम, ग्रैटिट्यूडनेस। और इसका उल्टा है अश्रद्धा, कि मैं मानता ही नहीं हूं कि मेरे जिंदगी में किसी का कोई उपकार है। वैसे तो अगर किसी ने भी मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं किया तो भी अगर डायरेक्टली मुझे लगता है कि किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो भी मैं ये मान नहीं सकता कि मैं अपने आप सब कुछ हो गया। कुछ नहीं तो कम से कम इस नेचर ने, इस हवा पानी आकाश जल वायु और ये जो समाज है, कि डॉक्टर नहीं होते मेरा इलाज नहीं होता, दुकानदार नहीं होता मुझे सामान नहीं मिलता, किसान नहीं होता तो मुझे अनाज नहीं मिलता, टीचर नहीं होता मुझे ज्ञान नहीं मिलता, मेरे माँ बाप नहीं होते तो मेरी परवरिश नहीं, किस किस को आप छोड़ते जाएंगे, कहां कहां आप नकारते जाएंगे। पर क्या करें, दुनिया में करोड़ों लोग आपको मिलेंगे, इस क्रुएलिटी और वायलेंस की फीलिंग रखने वाले लोग जो सबको नकारने को तैयार है, मेरे लिए क्या किया। ऐसा व्यक्ति, ये बच्चों को सिखानी भी जरूरी है, जिंदगी में कभी ना सफल हो सकता है, हो सकता है मैटेरियल लाइफ में सक्सेस हो जाए, आगे बढ़ जाए, पर उसके अंदर में कभी भी ना खुशी ना शांति आप टटोलने पर उसको मिलेगा। आगे आते हैं, अगला है जिसको हम कहते हैं हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का सिंपल सा मीनिंग है जो आपके अंदर है, जो बाहर अलग और अंदर अलग है। छठे सिक्स्थ वाला लगाएंगे। हाँ ठीक है। One should be free from anger, shun bitter language, should speak only truth। ये सब चीजें जानते हैं, ज्यादा चर्चा की बात नहीं, पर जो छोटी छोटी चीजें जाननी जरूरी है। ये अब ये जो मीठा बोलना, ये हमारे पता नहीं क्यों शायद अनंत कालों से इसकी एक प्रॉब्लम रही है, इसलिए वेदों से लेकर सभी बोलते मीठा बोलो। मीठा बोलने का अब घरों में जितनी झगड़े होते हैं आप देखेंगे वो बिना मतलब के होते हैं, सिर्फ कड़वा बोलने के कारण ज्यादातर। या तो सब्जी अच्छी बनी है ये ना बोलना, या खराब बनी है जिस दिन उसने चिल्लाकर बोलना। ये छोटा सा रीजन है मियां बीबी में लड़ाई। मतलब है कि हमारी वाणी में वो मधुरता नहीं होती है। और हमारे मनोजी मनुस्मृति में मनो महाराज लिखते हैं कि सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, सत्य बोलो पर मीठा बोलो। क्यों? तुम सच बोलने के नाम पर दूसरों का घर उजाड़ोगे। काना को काना कहना सच है, पर यही आप दूसरे को ये वायलेंस है, ये क्रुएलिटी है, ये क्रूरता है। काना को काना बोलने में कोई मना नहीं है, आपको कोई नहीं कहता है कि आप झूठ बोलो, पर सॉफ्टली बोलो, स्वीटली बोलो। चोर को चोर कहने में कोई नहीं रोकता, पर कहने के अंदाज में फर्क पड़ता है कि आप कठोरता से कहते हैं या कोमलता से कहते हैं। जब हमारी कहने के अंदाज में क्रूरता झलके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना हो तो सच भी पाप का आधार बन जाता है। और हमारे जीवन में आमतौर पर बातचीत में जो कठोरताएं हैं, जो बोलने के अंदाज में जो हम थोड़ा ऊंची पीच में बोलते हैं, ऊंचे पीच पर बोलते हैं, वहीं से रिलेशनशिप में गड़बड़ियां आती है। इसीलिए मीठा बोलना, गुस्सा कम करना, सच बोलना पर मीठे मीठा के साथ बोलना, ये बड़ी जरूरी है। वाइल अटेंडिंग ए मीटिंग, ये छोटी छोटी बातें हैं, वन शुड टेक ए सीट अकॉर्डिंग टू हिज रैंक, ये तो सामाजिक व्यवहार है। हमारे संस्कृत में एक बड़ा नीति शास्त्र है, उसमें श्लोक आता है कि ऐसे जगह सभा में बैठो कि कोई आपको उठाने की कोशिश ना करे। मतलब कुछ लोगों की बीमारी होती है हमेशा आकर के सबसे आगे स्टेज पर। आप देखेंगे पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में आप ज्यादा देखेंगे, मंच पर नेता बैठा होगा तो वो कम से कम वो कभी कभी तो वो स्टेज गिर जाता है। भारत में पता है जो पॉलिटिकल मीटिंग्स होती है तो उसमें इतने लोग चढ़े होते हैं कि वो स्टेज गिर जाता है। फिर क्या करते हैं, पुलिस आकर के खींच करके बाहर निकालना पड़ता है। मतलब सभा में असेंबली में मुझे ये समझना जरूरी है कि मेरा स्थान कहां है। मैं जब अपने आप को ज्यादा आंकूंगा तो मैं सुपीरियर जगह पर जाने की कोशिश करूंगा, और होगा क्या, वॉलेंटियर्स आएंगे उठा करके पीछे बैठा देंगे। तो इसीलिए हमारे नीति शास्त्रकार क्या कहते हैं, या तो आप अपनी आपका जो योग्यता है उसके आधार पर आप देखो आप कहां बैठे हुए, और सबसे अच्छा आपको पता नहीं है तो पीछे बैठो। आपकी योग्यता होगी लोग आपको उठा करके आगे बैठाएंगे, पीछे से आगे बैठने वाले को सम्मान मिलता है, पीछे वाले को आगे बैठाने, आगे वाले को पीछे बैठाने पर अपमान का महसूस होता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि आपकी जो रैंकिंग है वो आर्मी में है या गवर्नमेंट में है या बिजनेस में है या घरों में है या मंदिर में या सत्संग में है या कहीं भी है, आपका जो रैंक है, आप जिसको अपने हिसाब से आंकते हो, आप वही सीट लो। आप अपने आप को दिखाने के लिए आगे मत बढ़ जाओ। आपकी योग्यता ज्यादा होगी, आपको छोटी सीट मिली होगी, अपने आप लोग उठा के ज्यादा सीट पर बड़ी सीट पर बैठाएंगे। ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई नैतिकता की बात नहीं है। अगला आते हैं, ही शुड नॉट शो हॉस्टिलिटी टू एनीवन, इवन इन प्रॉस्पेरिटी वन शुड एक्वायर गुड क्वालिटीज एंड शन बैड वंस। ऐसा इंसान की फितरत है कि इंसान के पास जब कुछ चीजें बढ़ने लगता है, तो पोसेसिंग उसके बढ़ने लगता है, धन बढ़े, ज्ञान बढ़े, यश बढ़े, उसकी पावर बढ़े, तो वो जैसा था वैसा नहीं रह पाता है। सभी नहीं, कुछ लोग ऐसा हो जाते हैं, पोस्ट पाते ही बदल जाते हैं, पैसा बढ़ते ही बदल जाते हैं, नॉलेज बढ़ते ही बदल जाते हैं, समाज में उनकी अगर प्रतिष्ठा बढ़ने लगे, उनका नाम बढ़ने लगे तो बदल जाते हैं, उनका नेचर बदल जाता है, उनके अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, दुनिया से बात करने की तरीका बदल जाती है। ये अंदर से कमजोर इंसान का लक्षण है। मजबूत इंसान वो है जो गरीबी में भी जितना सौम्य था, विनम्र था, धनी होने पर भी उतना ही विनम्र, उतना ही सौम्य, मूर्ख होने पर भी जितना वो सम्मान देता था दूसरों को, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी होने पर भी उतना ही झुकता है। और वैसे तो कहा जाता है जिसके पास जितना अधिक होता है वो उतना ज्यादा झुकता है। और इसका उदाहरण देते हैं हमारे संस्कृत में श्लोकों में, फलन्ति गुणी नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। पेड़ में जब फल लगने लगते हैं ना, जितना ज्यादा पेड़ों में फल लगेगा पेड़ उतना झुकेगा, बिना फल वाले पेड़ सीधे टांग सर ऊपर करके चलेंगे। बादलों में जब पानी भरेगा, बरसने लायक होगा तो बादल झुकता है, बिना बरसने वाले बादल ऊपर उड़ते हैं। इसी तरह खोखले इंसान ज्यादा घमंडी होते हैं, ज्यादा सर ऊंचा कर चलते हैं, भारी इंसान धन से, ज्ञान से, यश से, कीर्ति से जितना अधिक होगा उतना वो झुककर चलेंगे, विनम्रता से चलेंगे। जीवन में बड़ी जरूरी चीज है विनम्रता। अपने पिता माता आचार्य आदि की सेवा करने की जरूरत है। आगे आते हैं आठवां स्लाइड। मैं आज कोशिश करूंगा इसको खत्म करने की दो चार मिनट में। और ये एक श्लोक है हमारे बहुत पुराना तैतरीय उपनिषद का, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि न इतराणि। जब कन्वोकेशन होता है, जिसको आजकल आप ग्रेजुएशन कहते हैं, जब प्राचीन काल में गुरुकुल से शिष्य पढ़ने के बाद वो गुरुकुल से बाहर निकलता था तो गुरुजी उसको कुछ खास इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इस लाइफ के बाद, अब स्टूडेंट लाइफ के बाद जो वो जो जिंदगी निभाएगा तो उसमें किन किन चीजों को ध्यान रखें। तो उसमें से एक लाइन ये है कि जिंदगी में हमसे सब कुछ मत सीख कर जाना, ध्यान रखिएगा। गुरु उसको उपदेश देता है, हमसे सब कुछ सीख करके मत जाना, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम सारे के पूरे प्योर हैं, अच्छे हैं। हम भी इंसान है, हमारे में भी कुछ बुराइयां हो सकती है। इसीलिए जो हमारे पास अच्छे चरित्र हैं, जो भी अच्छा व्यवहार है वही सीख कर जाना, जो हमारे में बुराइयां हैं वो तुम मत लेकर के जाओ। कभी कभी कुछ माँ बाप को, टीचर्स को प्रॉब्लम होता है, जो लोग सिगरेट पीते हैं या और कुछ पीते हैं, बच्चों को हैंडल करना मुश्किल होता है, मना करना। बच्चा सवाल पूछता है, आप तो पीते हो। ये जरूरी है बच्चों को बताना कि ये मेरी कमी है, मैं इसको रोक नहीं पाया। तुम अगर इसको अभी से अडॉप्ट करोगे, तुम भी इसी तरह बाद में रोते रहोगे। और ये हमारी भारतीय या वैदिक धर्म की जो ऋषि मुनि रहे उनकी विशेषता है। या आजकल के गुरुओं के तरह हिपोक्रेसी में नहीं जीते थे, दूसरों को ये बोल बोल के नहीं घुमा फिरते थे कि मैं एनलाइटेंड हूं, कभी नहीं कोई बोलता था। इसलिए हमारे गुरुओं बड़े जोर से कहते थे बेटे हमसे सब कुछ मत सीखना, क्योंकि हम भी इंसान है, हमारे से भी कुछ बुराइयां होती होगी, जो हमारे में बुराइयां हैं उसको छोड़ जाना, सिर्फ अच्छाइयां लेकर के जाना। किसी कारण से हम अपनी बुराइयों को छोड़ नहीं पाए, बात छोड़ नहीं पाते, पर तुम सिर्फ अच्छाइयां लेकर के जाना। अगला आते हैं, दे शुड शो एंड प्रोपेगेट ओनली दोज थिंग्स व्हिच दे नो एज ट्रूथ, दे शुड नॉट हैव फेथ इन एनी हिपोक्रेट एंड मिसकंडक्ट। दुनिया में आपको बाजार में जैसे आप देखते हैं अच्छा सामान कम बिकता है, जिस सामान की पैकेजिंग अच्छी है, मार्केटिंग अच्छी है, वही बिकता है, वो ठीक है, वो मार्केट है, वहां अच्छी चीज की कीमत नहीं होता, जिस चीज की जो ब्रांडेड है उसका कीमत होता है। पर रियल लाइफ में इसका उल्टा होना बड़ी जरूरी है, क्योंकि ब्रांडेड हिपोक्रेसी पैदा करता है। इसीलिए किसी को अच्छा देख करके उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना, यह फंसने की कोशिश परेशानी होती है। आचरण एक अलग चीज है, बाजार में बिकने वाला सामान ब्रांडेड सामान अलग चीज है, किसी के कपड़े देख करके उसको अच्छा या बुरा आंकना आप हिपोक्रेसी को प्रमोट करना है। वो मूंछ दाढ़ी रखा है या नहीं रखा है उससे आप उसको अच्छा बुरा आंकोगे, उसके बाल कैसे हैं उससे अच्छा बुरा आंकोगे, वो कपड़े कैसे पहनता है, वो किस ढंग से बोलता है, मीठा बोलता है कि कड़वा बोलता है, उससे आपको अच्छा बुरा आंकोगे। इसका मतलब तुम हिपोक्रेसी को प्रमोट करते हो या हिपोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हो। हिपोक्रेसी मतलब बाहरी आवरण को देख करके, कवर पेज को देख करके अंदर के माल के बारे में आइडिया लगाना, यह हिपोक्रेसी को एक्सेप्ट करना या हिपोक्रेसी को प्रमोट करना। कभी कभी कवर और अंदर की चीजें अलग होती है और ज्यादातर अलग होता है। इसलिए बच्चों को मां बाप ज्यादातर पसंद नहीं आते क्योंकि मां बाप टोकते हैं, दोस्त पसंद आते हैं क्योंकि दोस्त वो सब कुछ करने के लिए भड़काते हैं जो मैं करना चाहता हूं। और ये बच्चों तक ये मैसेज जाना बड़ी जरूरी है। बच्चे, अध्यापक बच्चों को यह जरूर बार बार सिखाएं जो बचपन में उनको सिखाया गया, श्लोक मंत्र, आजकल तो वो भी नहीं सिखाते हैं, शुक्र है कि आपके बच्चे यहां आते हैं। बचपन में बच्चों को अर्थ नहीं पता होता है कि इसका क्या मतलब है, जो चीजें हम उनको रटवाते हैं, श्लोक है, मंत्र है, अच्छी अच्छी कोटेशंस हैं, पर यह जरूरी है। पर बच्चा जब समझने लायक होता है उस समय इसको समझाने की जरूरत है, और जो समझता है वो उसकी जिंदगी के लिए, उसके जब भी उसको कोई कन्फ्लिक्ट होता है लाइफ में, कभी कभी उसके मेंटली डिलेमा होती है, तब यही सब चीजें उसको रास्ता देने के लिए काम आते हैं। इसीलिए बचपन में जो हमारे स्क्रिप्चर्स में, जो हमारे मंत्रों में, वैदिक शास्त्रों में जो मंत्र है, श्लोक है, उपदेश है, बिना अर्थ जाने रटवा देना जरूरी है छोटे उम्र में, पर बड़े होने पर उनका अर्थ उनको समझाना जरूरी है, क्योंकि बड़े होने पर आप उनको रटवा नहीं सकते, वो बचपन में ही आपकी बोल मानेंगे, बड़े होने पर तो बोल मानने के लिए रहेंगे नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मोंटेश्वरी स्कूल में अब जाता हूं आजकल कुछ दिनों से, आचार्य जी बीमार चल रहे, तो देखा 2.5 साल के 3 साल के 4 साल के बच्चे, हम अपने बच्चे को घर में नहीं सिखाते पर मोंटेश्वरी स्कूल में उनको, आपको आश्चर्य होगा, आप में से कितने आर्य समाज में कितने सालों से आते हैं, आपको कितने मंत्र याद है नहीं है, पर मोंटेश्वरी स्कूल के वो 2.5 साल के 3 साल के 4 साल के बच्चों को सारे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना 8 के 8 मंत्र याद है, किसी किसी को 15-15, 20-20 मंत्र याद है, श्लोक याद है, और बिना रुके वो एक्सप्रेस गाड़ी की तरह आपको सुनाते जाएंगे, आपको लगेगा जैसे कोई पंडित बोल रहा है, इतना शुद्ध और इतना बढ़िया बोलते,
उनको अर्थों का कोई पता नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। जब वो अपने आप 15, 16, 17, 18 साल के होंगे, या तो वो खुद डिमांड करेंगे कि इसका अर्थ क्या ढूंढने के लिए, या आपका काम है कि आप उनको अर्थ समझा दें। अर्थ समझना आजकल मुश्किल नहीं हो तो इंटरनेट से लेकर हर जगह मिल जाता है, पर आप 15 साल 18 साल के बच्चे को रटवा नहीं सकते हो। बस मैं समाप्त करने जा रहा हूं। 12वां आप लगाएं, 12th। एक छोटी सी बात है, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, वो कहकर बात समाप्त करता हूं। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिवेत, सत्यपूतम वदेत वाचम, मनपूतम समाचरेत। ये मनुस्मृति का एक श्लोक है। देखिए आपके बच्चे के रटने लायक है कि नहीं है। स्वामी जी इसको कोट करते हैं कि जब चलो आंखों से छाना गए रास्ते पर चलो पैर रखो, मतलब चलते समय नीचे देख करके चलो। ये बड़ी पुरानी बातें हैं, अपने आपके दादी माँ दादाजी आपको समझाते होंगे। वस्त्रपूतम जलम पिवेत, पानी पीते समय कपड़े में छान करके पियो, और कपड़े की जरूरत नहीं, आजकल फिल्टर हो गया है, पर फिल्टर वाटर पीना चाहिए। सत्यपूतम वदेत वाचम, वाणी बोलते समय अपनी वाणी सत्य से छाना, फिल्टर्ड होना चाहिए। और मनःपूतम समाचरित, कोई भी काम हम करें वो हमारे माइंड से, हमारे डिलिब्रेशन से, हमारे डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट से फिल्टर्ड होना चाहिए कि ये करने लायक है या नहीं है। ये जीवन में छोटी छोटी चीजें हैं, हम अगर अपने बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे को हम एक होलिस्टिक लाइफ दे सकते हैं, पर्सनैलिटी दे सकते हैं, जो सिर्फ एक अच्छा इंजीनियर या अच्छा डॉक्टर या अच्छा बिजनेसमैन नहीं होगा, एक अच्छा इंसान होगा, एक अच्छा इंडियन होगा, एक अच्छा हिंदू होगा, एक अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी बात है, एक अच्छा ह्यूमन बींग होगा, एक अच्छा इंसान होगा। और कहा लास्ट में, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठित, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वो माँ अपने बच्चों का दुश्मन है, वो बाप अपने बच्चों का दुश्मन है जो अपने बच्चों को सही ज्ञान नहीं देते हैं। इसी के साथ यहीं विराम लेते हैं। आप लोगों ने ध्यान से सुना, ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। आगे से हम वाल्मीकि रामायण की कथा शुरू करेंगे। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अब आरती। अच्छा।